नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और यूरोपीय संघ के बीच अगले सप्ताह नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन में नए सुरक्षा और रक्षा भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर होने के साथ रणनीतिक संबंध और मजबूत होंगे। यूरोपीय संघ में विदेश नीति प्रमुख काजा कलास ने कल शाम फ्रांस में यूरोपीय संसद में संबोधन के दौरान इसकी घोषणा की। सुश्री कलास ने कहा कि इस समझौते से हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करने के साथ समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद से निपटने और साइबर सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में सहयोग मजबूत होगा। सुश्री कलास ने कहा कि संघ का लंबित यूरोपीय संघ भारत मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता को अंतिम रूप देने का लक्ष्य है। इस समझौते पर यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फोन डेर लॉयन और यूरोपीय संघ के अध्यक्ष अंतोनियो कोस्ता की भारत यात्रा के दौरान हस्ताक्षर होंगे। ये दोनों गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि हैं। वे 27 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ 16वें भारत यूरोपीय संघ की अध्यक्षता करेंगे। G4 देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन के लिए शीघ्र कार्रवाई का एक मॉडल प्रस्तुत किया है। समूह ने चेतावनी दी है कि संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था में सुधारों में देरी से और अधिक मानवीय पीड़ा और कष्ट होंगे। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए अंतर सरकारी वार्ता में G4 की ओर से ये बात कही। G4 में भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान शामिल हैं। श्री हरीश ने सभी श्रेणियों और भौगोलिक क्षेत्रों को शामिल करते हुए सुधारों के लिए G4 के ठोस मॉडल को सामने रखा।
परिषद का आकार वर्तमान 15 से बढ़ाकर 25 या 26 किया जाना चाहिए, जिनमें से 6 नए स्थायी पद होने चाहिए। इन 6 नए स्थायी पदों में से 2 अफ्रीकी क्षेत्र को, 2 एशिया प्रशांत क्षेत्र को और 1-1 लातिन अमेरिका और पश्चिमी यूरोप को दिए जाने चाहिए।
भारत ने पिछले एक दशक में स्वयं का उभरते हुए राष्ट्र से एक महत्वपूर्ण वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में वास्तविक परिवर्तन होते हुए देखा है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू और गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कल स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के दौरान ये बात कही। दोनों नेताओं ने कहा कि ये सशक्त विकास और व्यापक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के कारण संभव हुआ है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कल तमिलनाडु के मदुरंतकम में प्रधानमंत्री की जनसभा के लिए गठबंधन के सहयोगियों के साथ चर्चा चल रही है। आज मीडिया के साथ बातचीत में राज्य में विपक्ष के नेता और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के महासचिव इडापड्डी पलनीसामी ने कहा कि लोगों को डीएमके का विरोध करना चाहिए क्योंकि ये जनविरोधी है और विकास के खिलाफ है। उन्होंने सनातन विरोधी बयान के लिए उदयनिधि स्टालिन की आलोचना की। श्री पलनीसामी ने कहा कि कल की बैठक राज्य में राजनीतिक परिदृश्य से काफी महत्वपूर्ण रहेगी। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले के घने सारंडा जंगल में आज सुबह सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। कोबरा, झारखंड जगुआर और जिला पुलिस के संयुक्त दल के तलाश अभियान के दौरान छोटा नागरा थाना क्षेत्र में गोलीबारी हुई। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार कुछ माओवादियों के हताहत होने की खबर है। मुठभेड़ के बाद माओवादी जंगल और पहाड़ी इलाकों में भाग गए। सुरक्षा बलों ने इलाके में गहन तलाश अभियान शुरू कर दिया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद से असम सरकार को प्राप्त मोबाइल स्ट्रोक यूनिट से स्ट्रोक के इलाज में क्रांतिकारी बदलाव आया है। इस पहल से उपचार का समय 24 घंटे से घटकर मात्र 2 घंटे रह गया है और स्ट्रोक से होने वाली मौतों में 1/3 की कमी आई है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में दोपहर के कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम रिपोर्ट मिलने तक सेंसेक्स 210 अंक बढ़कर 82,120 और निफ्टी 76 अंक की वृद्धि के साथ 25,233 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।